ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत से पठन स्कंद 6 अध्याय 14 और श्लोक संख्या 11 12 है। तो पहले हम 11 पढ़ते हैं, इसके बाद फिर 12 की पुनरावृत्ति करेंगे। तस्य भार्या सहस्त्राणां सहस्त्राणि दशाभवन् शान्तनिकस्यापि नृपो न लेभेतासु सन्ततिम्। तो राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ पत्नियां थी। सोचो, भगवान श्री कृष्ण के तो मात्र 16,000 थे। है, देखो ये होते हैं भगवान के भक्त। भगवान से भी ज्यादा है उनके पास क्षमता है। तो राजा चित्रकेतु के पास 1 करोड़ पत्नियां थीं और यद्यपि वह संतान उत्पन्न करने में समर्थ था, किंतु उनसे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। संयोगवश सभी पत्नियां बांझ थी। अब श्लोक 12। रूपा औदार्या जन्मा विद्या ऐश्वर्या श्री आदिवी संपन्नस्य गुणै सर्वे चिंता बंध्यापते अभूत। शब्दार्थ रूपा सुंदरता, औदार्य उदारता, वया युवावस्था, जन्म उच्च कुल में जन्म, विद्या ऐश्वर्य श्रेय आदिवी संपत्ति आदि से संपन्नस्य युक्त गुणै गुणों से सर्वे समस्त चिंता बंध्यापते अनेक बांझ पत्नियों के पति चित्रकेतु की अभूत थी। अनुवाद और तात्पर्य अवेचनार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है, इन करोड़ पत्नियों का पति चित्रकेतु अत्यंत रूपवान उदार तथा तरुण था। वह उच्च कुल में उत्पन्न हुआ था, उसे पूर्ण शिक्षा प्राप्त हुई थी और वह संपत्तिवान एवं ऐश्वर्यवान था। फिर भी इन समस्त गुणों के होते हुए भी किंतु कोई पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत चिंतायुक्त रहता था। सब कुछ है लेकिन बच्चा नहीं है, कई बच्चे हैं लेकिन सब कुछ नहीं है, यही संसार है। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि राजा ने पहले एक विवाह किया किंतु उससे कोई संतान न हुई, तब उसने दूसरा और फिर तीसरा फिर चौथा आदि कई विवाह किए किंतु किसी भी पत्नी से कोई पुत्र न हुआ। उच्च कुल में जन्म लेने एवं ऐश्वर्य शिक्षा तथा रूप से संपन्न होते हुए भी वह अत्यंत दुखी था, क्योंकि इतनी सारी पत्नियां होने पर भी उसको कोई पुत्र नहीं था। निश्चय ही उसका विषाद स्वाभाविक था। गृहस्थ जीवन का अभिप्राय यह नहीं कि पत्नी तो हो किंतु संतान न हो। चाणक्य पंडित कहते हैं, पुत्रहीनम गृहं शून्यम्। यदि गृहस्थ पुरुष के पुत्र न हो तो घर मरुस्थल के समान होता है। राजा निश्चित रूप से अत्यंत दुखी था, क्योंकि उसे कोई पुत्र नहीं हुआ और इसलिए उसने अनेक बार विवाह किए। क्षत्रियों को एक से अधिक पत्नी से विवाह करने की विशेष अनुमति है, इसलिए इस राजा ने ऐसा किया। इतने पर भी उसे कोई संतान न हुई। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जना सलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदन्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रशभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। आराध्यौ भगवान ब्रजेश तनय तत धाम वृंदावनम रम्या कांचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमा पुमार्थो महान श्रीचैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरौ न परः। वांछा कल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूतैर महद्वी यह इमाम पुरो विभु निर्माय सेते यदमूष पुरुष भुंक्ते गुणानसो षोडशात्मकं सो अलंकर शिष्ट भगवान बचांसी में। सोलंकृष्ट भगवान वचन सी में। हरे कृष्णा। तो सभी के लिए यहां पर उपस्थित जितने भी भक्त हैं, माता हैं, सभी की इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत शास्त्र में हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सब उपस्थित हैं इतना कष्ट उठा करके भी, साथ साथ में हम आप सभी की कृपा की भी याचना चाहते हैं, जिससे कुछ हम बोलने का दुस्साह करें श्रीमद् भागवत के ऊपर। तो यहां हम सुन रहे हैं महाराज चित्रकेतु के बारे में। महाराज चित्रकेतु पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं। प्रजा उनकी आज्ञाकारी है, सभी सब कुछ ठीक है। पृथ्वी भी जैसे आगे हम सुने थे कि पृथ्वी भी कामधेनु की तरह थी। कामधेनु का मतलब जो चाहो जो कामना करो फट ले लो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है भाई, चाहने से सब कुछ मिल जाए। तो पृथ्वी को कोई गोड़ना बोना नहीं पड़ता था, या यूरिया वगैरह आजकल इतना केमिकल वो मिलाए जा रहे, वो सब की जरूरत नहीं थी। पृथ्वी हमेशा ही फल फूलों से धन धान से संपन्न रहती थी। दूसरा जो है रूप, जैसे आज के श्लोकों में सुनने हैं, तस्य भार्या सहस्त्राणाम सहस्त्राणी दशा अभवन। तस्य भार्या, उनकी जो पत्नियां थी सहस्त्राणाम सहस्त्राणी, सहस्त्राणाम मतलब 1000 और सहस्त्राणी मतलब 1000, तो 1000 × 1000 कितना हुआ, 1 करोड़। सहस्त्राणी फिर दशा भवन इंटू दस, नहीं सॉरी, सहस्त्राणी मतलब सहस्त्राणी हजारों हजारों, सहस्त्राणी मतलब 1000 × 1000 कितना हुआ, ये 10 लाख, 10 लाख × 10 तो 1 करोड़ ऐसे हुआ। हाँ वही मैं बोला कि 10 करोड़ कैसे हुआ। तो 1 करोड़ उनके पत्नियां हैं, संतानिक च अपि नृपो न लेभे तासु संततिम। 1 करोड़ रानियां होकर के भी उनको कोई संतान नहीं थी। और आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि रूप जो है महाराज चित्रकेतु कैसे थे, बहुत रूपवान थे, औदार्य संकुचित हृदय वाले मन वाले नहीं थे। बड़ा मतलब जो उनके पास में आ जाता था उसकी कामना को पूरा करते थे। ये औदार बहुत अच्छा गुण है, बहुत से होते हैं मक्खी चूस जैसे होते हैं, न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन इनके यहां ये बहुत अच्छा गुण है। तो रूप औदार्य वय युवावस्था है, यौवन है, अभी कोई ऐसा नहीं कि वृद्धावस्था है उनके, युवा है। जन्म उच्च कुल में जन्म हुआ उनका, क्षत्रिय राजा है तो आप समझ सकते हैं कितने क्षत्रिय हैं। विद्या ऐश्वर्य श्री आदि भी, विद्या से ऐश्वर्य से और संपत्ति आदि से संपन्न, संपन्न का मतलब युक्त थे, सब कुछ उनके पास में था। और गुणई सर्वे, समस्त गुणों से संपन्न थे, ये भी नहीं कह सकते कि भाई कि उनके अंदर कोई विशेष दुर्गुण हो। कभी कभी कोई बात दुर्गुण कोई ऐसा आ जाता है तो बोलते हैं अरे इसके कारण वो ऐसा नहीं हो रहा है, तो कभी कभी बहाना हो जाता है कि नहीं, बहाना हो जाता है, वो ऐसा करता तो फिर ऐसे होता था, जरूर होता था, लेकिन वो क्या है ना, उसके अंदर एक विशेष गुण है, लेकिन इनके अंदर सारा गुण है, संपन्न गुण ही सारे गुणों से युक्त है, लेकिन चिंता है, लेकिन फिर भी चिंता है, यही असल संसार की वास्तविकता है। कोई ये सोचे कि हम सब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तो फिर सुखी हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, प्राप्त होगा तो सुखी होंगे, लेकिन हम महाराज के चित्र केतु के प्रसंग से देख सकते हैं, हमें तो क्या प्राप्त होगा, जाए या दो चार रूम का घर मिल जाएगा, बीवी मिल जाएगी, थोड़ा बहुत बैंक में बैलेंस मिल जाएगा, कोई नौकरी मिल जाएगी, इससे ज्यादा क्या मिलेगा हमें। लेकिन यहां देख सकते हैं इतने बड़े सम्राट हैं, सारी प्रजा, सारे सैनिक, सारे मंत्री सब उनके अनुकूल हैं। ये भी राजा का एक बहुत बड़ा है, हाँ, कि जिसका जो है हर चीज पॉजिटिव हो, ये बहुत बड़ा उनके अंदर भगवत कृपा समझना ही है, भगवत कृपा समझना चाहिए उनके ऊपर। तो सब कुछ है उनके अंदर, लेकिन क्या नहीं है, बंध्या पतेर भूत, क्योंकि उन वो बंध्या पते है, उनकी पत्नियां कैसी हैं, बांझ है। तो ये है संसार। इसलिए सिद्धांत ये है, क्या सिद्धांत है, सिद्धांत ये है कि भाई संसार को कितना भी हम अच्छी तरीका से लीपापोती करें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या बनी ही रहती है। यहां देखते हैं इतने सुंदर सुंदर बाहर से फ्लैट अच्छे लगते हैं, सारी फैसिलिटी भी है, लेकिन मालूम चलता है कि जो है यहाँ का पानी इतना खराब है कि दो चार साल में ही वो उखड़ने लगता है, उसकी प्लास्टर उखड़ने लगता है, होता है कि नहीं होता है। एक 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 प्रभु हमें बुला के लेके गए थे, तो खूब अच्छा स्वागत सत्कार किया, लेकिन ठंडी में देखो कुकड़ रहे हैं, मैं भी वहां कुकड़ने लग गया, मैंने क्या बात, यहाँ सूर्य नहीं आता, बोला प्रभु सूर्य नहीं आता है। भाई अब क्या करें, इतना सुंदर फ्लैट लिए, सब कुछ है, लेकिन सूर्य के दर्शन नहीं है उसमें। तो संसार ये ही है, संसार का मतलब होता है यहां कोई सुखी हो नहीं सकता। ना च इंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखम अस्ति एकांतिक सुखम अस्ति विरक्तस्य एकांते मुनि जीवन। ना च इंद्रस्य सुखम किंचित, किंचित का मतलब रत्ती भर भी है। आप कहें कि भाई इंद्र बहुत सुखी हो सकता है, जब इंद्र सुखी होगा तो ना च चक्रवर्ती ना, तो चक्रवर्ती तो इंद्र के उसमें ही आ जाता है ना, एक इंद्र का देख करके उदाहरण दे करके हम समझ सकते हैं कि जब स्वर्ग का राजा इतने पुण्य करके और इंद्र की पोजीशन को प्राप्त करता है तो उसके लिए सुख नहीं है। तो ना सुखम चक्रवर्ती ना, तो चक्रवर्ती हुआ या उसके नीचे अन्य अन्य राजा हुए, फिर जो है छोटी मोटी नौकरी करने वाले हुए, फिर हम जैसों की तो कहीं वो नाम ही नहीं होगा उस लिस्ट में। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी है, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी है, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे शिव, ब्रह्मा कहे सुख शिव जी को भारी है, और तुलसीदास विचार कहें, तुलसीदास जी बोलते हैं क्या विचार करके कहते हैं, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी हैं। तो जब तक कोई भगवान का भजन नहीं करेगा तो इस संसार के अंदर सुख की बिल्कुल उम्मीद छोड़ देना चाहिए, चाहे सारी संपदा भी उसके पास में क्यों ना हो, लेकिन सुख सुख मिल नहीं सकता है। इसलिए जो है क्या नाम है, कहा जाता है कि महाराज चित्रकेतु इतने बड़े सम्राट होकर के भी एक पुत्र नहीं है, बस बाकी तो सब कुछ है ना, है एक पुत्र नहीं तो क्या फर्क पड़ता है भाई है? क्या आप समझ सकते हैं कि पुत्रवान सब सुखी हैं? यहां सभी सुखी हैं जिनके पास में पुत्र हैं है? इसमें 50% ऐसे होंगे जो बेचारे पुत्रों की मेहरबानी से यहां आ गए हैं है? हाँ, पुत्रों की मेहरबानी से यहां भजन करने के लिए आ गए, नहीं तो थोड़े आने वाले थे, इतना आसानी से छोड़ने वाले थोड़े थे वो। तो उस पुत्र का हम तो जो है बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे पुत्र सबके हों जो कम से कम घर तो छुड़ा देते हैं वो है? तो पुत्र ना होना केवल इतनी ही बात समझ लेना चाहिए कि पुत्रों की जो तोतली वाणी है, क्योंकि संसार के जो जितने भी गृहस्थ हैं, गृहस्थों का सबसे बड़ा सुख है जब घर में बच्चा जो है तुतला तुतला करके पापा पापा मम्मी बस ये दो शब्द इतने सुन लेते हैं उनको रोमांच अश्रु पुलक सात्विक विकार उनके अंदर हो जाता है। चाहे भजन में हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे की वाणी को सुन करके उनको लगता है कि सारा संसार इससे बढ़कर के और कुछ सुख नहीं है, और वास्तव में ये बात सत्य है। क्योंकि देखा जाता है संसार में कि पुत्र वाले जो हैं हजार काम छोड़ देंगे, यहां कभी कभी बेचारे आते हैं दर्शन के लिए, कभी कभी सत्संग में बैठ जाते हैं, लेकिन यदि उनका बच्चा छोटा है तो वो खेला है कुछ लग रहा है तो वो बिल्कुल चुप नहीं करेंगे बच्चे को, चाहे खुद सत्संग ना सुने चाहे दूसरे भी कोई डिस्टर्ब, नो प्रॉब्लम। लेकिन उनको ये मालूम नहीं चल रहा है कि मैं तो डिस्टर्ब सुन ही नहीं रही हूं या सुन नहीं रहा हूं, लेकिन दूसरे भी नहीं सुन रहे हैं, तो उनको कोई भूल जाते, क्योंकि वहां कौन सा समय, वहां तो है ही नहीं, वो शरीर में तो है ही नहीं, वो शरीर के बेटा के शरीर में, इसलिए उनको मालूम नहीं चलता है कि बच्चे के कारण औरों को भी डिस्टर्ब होता है। देखा जाता कभी कभी सत्संग में देखा जाता, विशेष करके जो बाहर प्रोग्राम होते हैं संडे फीस्ट वार में, तो वहां जो है सब तो गृहस्थ ही होते हैं, तो वहां जो है बच्चे लेकर के आते हैं बेचारे वो, तो फिर देखा जाता हुआ ऐसे। शास्त्रों में कहा जाता है, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है, प्रभुपाद जी ने चाणक्य पंडित का उदाहरण दिया है, पुत्रहीनम गृहम शून्यम। वास्तव में जिस घर में पुत्र नहीं, बच्चों की चहल पहल नहीं, वो घर कैसा है, बिल्कुल शून्यसान लगता है, मरुस्थल के जैसे प्रभुपाद जी ने दिखाई दिया, मरुस्थल है? मरुस्थल देखे ना आप जो है देखा है? तो बच्चों की ये वाणी बहुत मीठी लगती है, इतना रसगुल्ला भी जो है इतना टेस्टी नहीं होगा, इतना बच्चे की वाणी होती है टेस्टी। तो पुत्र का मतलब ये होता है, पुतः त्रायते इति पुत्र, जो मात पिता का नरक से उद्धार करे, पापों से उद्धार करे, उसी को वास्तव में पुत्र बोलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या वास्तव में सभी पुत्र वाले जो है सभी के बच्चे जो है सब उद्धार करने वाले हैं? तो ये बात भूल जाना चाहिए हमें, पुत्र हो ना होना एक समस्या है हमारे लिए, ठीक है ना, उसको पुत्र का जो है प्यार नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा समस्या बहुत उन लोगों के लिए है जिनके पुत्र तो हैं लेकिन संस्कारी नहीं है, लेकिन भगवत भक्त नहीं है। तो उनको आप जाकर के पूछो कि और पुत्र चाहिए, तो बिल्कुल उनको तुरंत बोलेगा नहीं प्रभु और है आप ले जाइए, उनको भक्त बना दीजिए, लेकिन अब हमें नहीं चाहिए पुत्र। क्योंकि पुत्र न होना तो एक बड़ी छोटी सी समस्या है, वास्तव में देखा जाए तो पुत्र न होना असलियत में भगवान की कृपा है, ठीक है ना। क्योंकि भगवान जानते थे इसको मैं पुत्र दूंगा, जैसे यहां राजा चित्रकेतु को देखेंगे और भी प्रसंगों में हम देखेंगे कि यदि मैं इनको पुत्र दूंगा तो ये भजन नहीं करेगा, न कम से कम पुत्र नहीं देने से कम कुछ तो इसको बैराग होगा कि चलो भाई संसार में क्या रखा है, अब तो भजन करना चाहिए, कम से कम इतना बैराग्य तो उसके अंदर होगा, होता है कि नहीं होता है। पुत्र न होने से देखा जाए तो ये भगवान ने आपको एक अच्छा सुयोग दिया है, किसके लिए, भजन करने का चांस दिया है, नहीं तो कितने सारे पुत्रवानों के कई सारे बच्चे हैं लेकिन माता पिता बेचारे वृद्धाश्रम में सड़ रहे हैं, होता है कि नहीं होता है। आजकल वृद्धाश्रम में एडवांस फुल हाउसफुल चल रहा है, एडवांस हाउसफुल चल रहा है, सारे वृद्धाश्रम भरे पड़े हुए हैं। एक बार मैं एक बार उस पर व्हाट्सएप पर किसी ने डाला था, चाइना में, चाइना में जितने भी वृद्ध हैं उनको क्या करते हैं, अब आप लोग शायद पढ़े कि नहीं पढ़े, मेरा क्या है ना मैं तो कभी कभी ऐसी चीज देखता रहता हूं कितनी कितनी समस्या आती है, तो वहां जो है वृद्धों को क्या करते हैं, वो बहुत मारते हैं, पर आप देखें ना, हाँ बहुत, मतलब ये दुर्गति कर देते हैं उसकी, पीट पीट करके, पीट 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 करके मार देते हैं उसको, वृद्ध का मतलब यूजलेस, अब इसका कोई काम नहीं है। तो सोचो ये जो है दुर्गति होती है, यदि पुत्र हुआ, यदि पुत्र नहीं होता तो कम से कम घर में भी रहते तो सुख से तो रहते थे, लेकिन यदि ऐसे पुत्र हो गए हमारे, यदि इनको हमने संस्कार नहीं दिए भविष्य में क्या शुरू से ही संस्कार देना होगा, तो शुरू से यदि संस्कार नहीं दिए तो संस्कार कौन देगा, तो हमें भी संस्कार ही बनना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो समझ लेना चाहिए कि ए बच्चे आप हमें कहां भेजेंगे, फिर मार मार करके वृद्धाश्रम में भेजेंगे। तो कम से कम पुत्र नहीं है तो कम से कम इतनी बात है कि चलो भाई कोई बात नहीं तो वृद्धाश्रम के तो दर्शन नहीं करेंगे, वृद्धाश्रम में तो आप जानते हैं कि क्या क्या दुर्दशाएं होती रहती हैं, सड़ते रहते हैं, वहां क्या है भाई, वहां तो ऐसे समझो जैसे एक टेंट के अंदर 10 की कैपेसिटी, वहां जो 50 भर दिए जाए, तो ऐसे जैसे पशुओं को गौशाला में भरते हैं ऐसे वृद्धाश्रम होते हैं देखा जाता है। तो कहने का आशय यह है कि पुत्र न होने से जो है एक छोटी सी समस्या है, लेकिन और दूसरा यदि पुत्र हुआ उससे जो है कई सारी समस्याएं हमें दिखाई देती हैं। बात अच्छा है, संस्कारी बच्चा है, भक्त बच्चा है तो श्रवण कुमार की तरह बनेगा, हमें ले कंधा पर लाद करके घूमता फिरेगा, तीर्थाटन करा देगा, लेकिन यदि बच्चा संस्कारी नहीं हुआ तो फिर डंडे से तीर्थाटन कराएगा, चलो भागो यहां से, होता कि नहीं होता है। तो इसलिए यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि राजा चित्रकेतु सर्वगुण संपन्न है लेकिन फिर भी पुत्र नहीं है, और एक जगह जो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है कि पुत्र वाले भी ज्यादातर बहुत सारे दुखी देखे जाते हैं, जैसे बहुत सारे हम शास्त्रों के संसार में तो देख ही रहे हैं, अभी ये स्थिति हो गई है 60% पुत्र वाले दुखी हैं, 40% तो 40% में 10% बेचारे हमारे जैसे ब्रह्मचारी होंगे और 30% जो है सुखी होंगे, जो है बाकी 60% दुखी हैं। तो शास्त्रों में उदाहरण दिए जाते हैं कि शास्त्र देखा जाता है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके पुत्र तो हैं लेकिन पुत्रों से इतने, जैसे महाराज अंग हुए थे, अंग का नाम चतुर्थ स्कंद में आता है कि नहीं आता है, महाराज अंग जिनके पुत्र हुए थे बैन, उसने बैन ही लगा दिया था सब पर, नाम यथा नाम तथा गुण, और बैन किस पे लगाया था, केवल अच्छे कार्यों पर, धर्म आप नहीं कर सकते, बाकी जो कर सकते धर्म के जो अपोजिट में जो आता है ना, बाकी यह सब करो कुछ करो नो प्रॉब्लम, बस आप धर्म का कोई काम नहीं कर सकते हो। सगर राजा के 60,000 पुत्र हुए थे, एक दो भी नहीं थे, लेकिन बेचारे जो है कपिल आश्रम में सारे के सारे भस्म कर दिए, फिर 3-4 पीढ़ियों के बाद उनका उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। और भी एक प्रसंग देखा जाता है भागवतम में, उसी प्रसंग को हम बताते हैं, ब्राह्मण आत्मदेव का प्रसंग देखा जाता है। कितना सुंदर प्रसंग है। आत्मदेव जो है, जिसके लिए कहा जाता है सर्व वेद विशारदः स्रोत स्मार्तेषु निष्णातौ द्वितीय भास्कर। आत्मदेव के लिए ऐसे बोला जाता है कि जो आत्मदेव है सर्व वेद विशारदः, महापंडित था। सर्व वेद विशारद का मतलब तुम्हारी पंडित है। स्रोत स्मार्तेषु, जितना भी पुराण है उपनिषद है सब में वो कैसा था, बिल्कुल पंडित था। द्वितीय इव भास्कर, और एक इतना तेजस्वी था कि एक दूसरे सूर्य के समान वो था। लेकिन जैसे महाराज चित्रकेतु के घर में कोई संतान नहीं थी, सब कुछ था उसके पास में, लेकिन एक लाला नहीं था। बस उसके लिए इतना सब कुछ भी उसे बिल्कुल नीरस लग रहा था। और अंत में उसने क्या किया, कुछ दान पुण्य किए थे, लेकिन भगवान ने उनको कुछ दिया नहीं दान पुण्य, तो ऐसे ही चला गया उसका बेचारे का। तो पुत्र नहीं हुआ तो घर छोड़ करके जंगल में चले गए। चलो भाई इससे अच्छा है सुसाइड कर लो बिना पुत्र के, क्या है। आत्मदेव जो है सुसाइड के लिए बाहर गया, जब एक जाकर के जो है एक जंगल में जाकर के बैठा तो वहीं कहीं से जो है भगवत के पास एक साधु महात्मा आ गए उनके पास में, जैसे अंगिरा के पास में आए थे उनके राजा चित्रकेतु के पास में अंगिरा ऋषि आ गए थे। तो ऐसे ही आत्मदेव के पास में भी एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने तो सोचा कि चलो भाई ये जंगल में बैठा है, लगता है कोई बहुत बड़ा महात्मा होगा, चलो थोड़ा बहुत सत्संग करेंगे इसके साथ में, कोई चर्चा करेंगे भगवत चर्चा। लेकिन बाद में मालूम चला कि बेचारा वो तो जो है घर गृहस्थी से परेशान होकर आया है। तो पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है, तो बस रोने लग गया। तो महात्मा तो थे ही, तो थोड़ी उनको और दे आगे, भाई यहां क्यों रो रहे हो। तब उन्होंने कहा कि जो है मेरे यहां पुत्र नहीं है। अरे भाई, तो उन्होंने समझाया कि पुत्र नहीं है तो ये तो अच्छी बात है भाई, अपना भजन करो, क्या रखा है संसार में। तो आत्मदेव ने कहा पुत्रादि सुखम हीनो अयम संन्यास शुष्क एवही गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पोत्रादि समन्वितः। आत्मदेव अपना जो है उदाहरण दे रहा है कि वास्तव में जिस घर में पुत्र नहीं है, बच्चे नहीं है, यदि कोई व्यक्ति संन्यास ले भी लेगा तो बिल्कुल शुष्क है, नीरस है, उस संन्यास में उसको कोई आनंद नहीं आएगा। और ये भी बात सही है कि जब संन्यास ले लिया कोई घर में नहीं है तो फिर घर का चिंतन नहीं होगा, है कि नहीं, बच्चों का चिंतन नहीं होगा, होगा है ही कि नहीं, तो नीरस हुआ कि नहीं हुआ। अब समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझे। यदि घर में बच्चे नहीं हुए, वो सब छोड़ करके चला गया भजन करने के लिए, तो वास्तव में तो उसका फिर मन तो भगवान में लगेगा ना, है? लेकिन भगवान में मन लगना ये शुष्क हुआ कि नहीं हुआ, कितना खतरनाक, मतलब कितना अच्छा लगता है भगवान में मन लगना। अब समझते हैं कि नहीं लगता, लेकिन घर में अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। घर में टाइम पास करना कितना फटफट टाइम पास हो जाता है, नहीं समझे इस बात को। तो ये अजाम जब आएंगे आत्मदेव जो है आप लोगों को समझाएगा, कभी आएगा बेचारा तो बताएगा आपको कैसे। तो उनका कहना है कि जो संन्यास लेगा बिना पुत्र के, बिना शादी विवाह के, तो बोलते हैं वो कैसा है, शुष्क एव ही गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पोत्रादि समन्वितः। तो ओ गृहस्थ वास्तव में इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी है, गृहस्थ सरसह लोके पुत्र पुत्रादि समन्वितः, पुत्र पुत्रों से युक्त है वास्तव में उस घर का, उस गृहस्थ का तो फिर कहना ही क्या। ये जो है आत्मदेव का अपना मतामत है। हालांकि उन्होंने समझाया कि भैया देखो पुत्र नहीं है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, तुम भजन करो, भजन करने से कल्याण होगा। लेकिन फिर भी वो बताता है धिक जीवतम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च पूजा बिना, प्रजा बिना, पूजा बिना, प्रजा बिना, धिक जीवतम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजा बिना धिकधनं च अनपत्यस्य धिककुलं संसति विना। अर्थात कहने का आशय है कि आत्मदेव उनको समझा रहे कि भैया तुम जो है भजन करो, तो लेकिन उन्होंने उनको कहा, साधु जी को कहा, महात्मा जी को कहा, महाराज धिक जीवतम प्रजा, इन्हें जिस घर में जो है जिसका कोई बाल बच्चे नहीं तो बेकार का है, उसका जीवन धिक्कार है। जिस घर में कोई बच्चे नहीं वो घर बेकार है, कितना भी धन होकर के भी ये संतान नहीं तो बेकार है, और वो कुल खानदान भी बेकार है जिस घर में कोई बच्चा नहीं है। तब महात्मा जी ने कहा भैया तू क्या करना चाहता है? बोला मुझे पुत्र दे दो। बोला पुत्र क्या, जो कोई पेड़ पे लटके हैं तो उन्हें तोड़ करके तुझे दे दूं मैं? बोला नहीं 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 दोगे तो मैं यही मरता हूं, आपके सामने मरता हूं। तो बेचारे महात्मा जी घबरा गए, बोला ये जो है अच्छा वाला, हम तो सोचे चलो सत्संग करेंगे इसके साथ में, लेकिन ये तो जो है इल्लत लग गई मेरे साथ में। तो उन्होंने क्या किया, एक फल दे दिया, तोड़ करके फल दे दिया, मंत्र पढ़ करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे भक्त कभी कभी दे देते, कोई ज्यादा जिद पकड़ता है तो भक्त लोग ले करके ठीक है ये लो, और आप ऐसे करना ठीक है ना, सब काम ठीक ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि वैसे तो मानने वाला नहीं है, तो कम से कम भक्त दे, कभी कभी वो सीधा भी पड़ जाता है, सत्य बोल रहे हैं, कभी कभी वो सीधा भी हो जाता है बहुत हो जाता। तो उन्होंने भी मंत्र पढ़ करके फल दे दिया अपनी पत्नी को दे देने का, लेकिन उससे बोलने का, क्योंकि इनकी पत्नी बहुत झूठ बोलती थी, झगड़ा करती थी, बोला वो सब काम ना करे। बोला ठीक है, वो दे दिया पत्नी, तो आप जानते हैं कि पत्नी तो पत्नी ही थी, उसने तो पहले ही सुनकर रखा था कि जो गृहस्थ में जो स्त्रियां जो बच्चे को जन्म देती हैं क्या क्या समस्या उनके साथ में आती है, तो इसलिए उन्होंने देखा भाई ये तो बहुत बड़ी समस्या है, ये तो फल खा लिया तो बच्चा होगा, पेट भरेगा, कमजोर शरीर हो जाएगा, खाना कम हो जाएगा, चला फिरा नहीं जाएगा, सारा सामान कोई ले चला जाएगा, तो इसलिए पुत्र तो खतरनाक चीज है। तो उन्होंने खाया नहीं और फिर गाय को दिया, आप सभी जानते हैं, और बाद में जो है उनकी बहन से मिलकर के उसने उनका बच्चा ले लिया था, जो बाद में इतना खतरनाक वो बच्चा हुआ, क्योंकि संस्कार तो दिए नहीं थे किसी ने भी। सबसे बड़ी ये समस्या हो जाती है कि पुत्र तो सबको चाहिए, लेकिन संस्कार न तो खुद संस्कार संस्कारों का पालन करते हैं, ना ही अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, इसलिए उसने बड़ी ख्याति पाई। और बच्चे जो फल दिया था गाय को, उनके भी एक बच्चा हुआ, उसने भी बड़ी ख्याति पाई, दोनों ने बड़ी ख्याति पाई। तो एक महापंडित ज्ञानी, दूसरा महाखलह, गौकर्णो पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखल, दोनों ने ख्याति प्राप्त की, एक पंडित महाज्ञानी बने और दूसरा नंबर एक का आतंकवादी बन गया जो है। और उसके बाद में उसकी सारी जो आगे चल करके जो हुआ दुर्गति हुई, तो हम सब समझ सकते हैं कि जो है कितना उसकी दुर्गति हुई, कि पूरा जो घर था, कहां जो है शंख की ध्वनि हुआ करती थी, कहां वेद मंत्र उच्चारण हुआ करते थे, कहां करतालें बजती रहती थी, हैं आज वहां जो है बोतल खटक रही हैं बोतलों की आवाज आ रही है, कहां जो है फूल रहते थे, फूल पड़े रहते थे, सुगंधी आती रहती थी, कहां वो हड्डी और उनकी जो है वो पड़ी हुई है, खाल पड़ी हुई है, मांस पड़ी है, लुथड़े पड़े हुए मांस एतार कर दिया था। और अंत में चलो यहां तक भी संभव हो, चलो कोई बात नहीं है भाई, टॉलरेट कर लेगा, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ, तो एक वैश्या को उन्होंने पहले जो है, बाद में तो कई सारी रखी थी, तो पहले तो एक वैश्या को उसने रख लिया, तो उसकी क्या नाम है उसको, उसको प्रसन्न करते करते जो सारी संपत्ति नष्ट कर दी उसने। जब संपत्ति नष्ट नहीं हुई तो जो है एक दिन पिताजी को आंख दिखाई, तो पिताजी तो समझदार थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, वो गुरुकुल में रहे थे, तो इसलिए उनको समझ में आया कि लगता है दाल में कुछ काला लगता है, कल मेरा नंबर आने वाला है, इसलिए पहले ही वो घर से निकल गए थे। क्यों, गोकर्ण जी से उन्होंने देखा कि देखो, क्यों गोकर्ण जी छोटे भाई थे उनके, तो उन्होंने पूछा कि बेटा देखो ये बड़ा तुम्हारा भाई बड़ा बिगड़ गया है। बोला पिताजी एक बात मानोगे? बोला बेटा बताओ क्या बात है? बोला आज ही घर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तब फिर उन्होंने कहा असारा खल संसारो दुख रूपी विमोहक सूत कस्य पुत्र कस्य इसने बान ज्वलतो निसं। ये संसार पिताजी कैसा है, असारा खल संसारो दुख रूपी विमोह कहा, जिन्होंने संसार में मोह लगाया, जिन्होंने भी संसार से प्रेम किया उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं आ सकता। असारा खल संसारो निसंदेह, खल का मतलब निसंदेह समझ लेना चाहिए। सूत कश्य धनम कश्य इसने वान ज्वलतो निसह, तो जिन्होंने भी संसार में प्रीति करी है उनको जो है समस्या से जड़ना ही होगा, समस्याओं से जो है बहुत कष्ट उठाना ही होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो पुत्र की इस प्रकार की उनको देखा तो पिताजी से जो घर छोड़ करके वो तो चले गए। इसके बाद में माता को पकड़ा तो माता रात में क्या किए, कुएं में कूद गई थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। फिर बाद में पूरा अपना घर में वही मालिक रहा। तो यहां ये सिद्धांत है कि भगवान ने उनको पुत्र नहीं दिया था। सिद्धांत क्या है कि सिद्धांत यह है कि भगवान ने जो हमारे लिए परिस्थिति पैदा की है देखा जाए तो वो हमारे लिए अनुकूल है, चाहे वो कष्ट की परिस्थिति है या वो सुख की परिस्थिति है, बस उसी को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। यदि हमने छेड़छाड़ करने का प्रश्न प्रयास किया तो निश्चित रूप से हमें समस्याओं से गुजरना ही होगा। जैसे राजा चित्रकेतु के यहां कोई बच्चा नहीं था लेकिन उन्होंने बड़ा दुखी हो गए तो अंगिरा ऋषि आए, आगे चल करके हम देखे तो उन्होंने पुत्र तो दे दिया लेकिन पुत्र का नाम हर्ष शोक रख दिया। पुत्र होगा तो हर्ष मिलेगा लेकिन बाद में जो है फिर हरिबोल होगा, फिर जो है रोते रहना फिर। तो सिद्धांत एक और ये भी है, इस संसार में भगवान का जो भी व्यवस्था है बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ना। भगवान ने जो हमारे लिए जैसा सुचेतन किया या संसार में जो कुछ बनाया है बिल्कुल परफेक्ट है। यदि हम इस व्यवस्था के पीछे यदि हम छेड़छाड़ करेंगे इस व्यवस्था में तो फिर उसमें भगवान को या दूसरे को क्या अनुयोग, लेकिन हमको हानि अवश्य ही होगी। और दूसरा सिद्धांत यह है कि भाई सब कुछ तो भगवान के हाथ में है, हम लोग प्रयास कर सकते हैं लेकिन प्रयास में सफलता मिलना या नहीं मिलना ये किसके हाथ में रहेगी, ये भी भगवान के हाथ में रहेगी, ठीक है ना। जैसे महाभारत का युद्ध होने वाला था तो महाभारत के युद्ध में 11 छोड़ी सेना कौरवों के पास में और पांडवों के पास में मात्र 7 अक्षौणी सेना है। जो कौरवों के पास में आप देखेंगे पिता में भीष्म है, जो अजर अमय है, उनको चाहे तो इच्छा मृत्यु का वरदान है उनके पास में। गुरु द्रोणाचार्य उनको वरदान है कि जब तक उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र रहेगा कोई परिस्थिति उनको परास्त नहीं कर सकती है। कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा ये दोनों के जो नहीं चिरंजीवी है, ठीक है ना। तो देखा जाए तो जो है और 4 ओ सेना है भगवान की, जो देवता भी जिस सेना को परास्त नहीं कर सकते, नारायणी सेना जो है 4 उनके पास में है, अक्षौणी सेना कौरवों के पास में है, सब कुछ है। इसलिए तो उन्होंने युद्ध के लिए ठान दिया, लेकिन भगवान की कृपा नहीं थी। इसलिए भगवान की कृपा नहीं होने के कारण 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पास होकर के भी, पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना थी, मात्र 7 अक्षौणी, लेकिन भगवान की कृपा पांडवों के पास में थी, कौरवों के पास भगवत कृपा नहीं थी। इसलिए कौरवों को किसका मुख देखना पड़ा, पराजय का मुख देखना पड़ा। तो सिद्धांत क्या है, सिद्धांत ये भाई संसार में हम सब कुछ प्रयास कर सकते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च प्रतिविद विविधान क्या है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च प्रतिविद विविदांश प्रत्यक्षेष्टा दैव चैव पंचमम 18वें अध्याय में भगवान ने गीता में कहा है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए 5 वो होते हैं अधिष्ठान, कर्ता, करण और चेष्टा। चार हमारी तरफ से हैं और पांचवा किसकी तरफ से है? भगवान, यही सुप्रीम है। बस चार हमारी तरफ से हो सकता है, हम प्रयास कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है हमारे पास में। जैसे इनके पास में जो है पत्नियां हैं, अच्छी पत्नियां हैं, वो भी खुद जो है संपन्न है, सब कुछ करने में पूरा अच्छा ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन भगवत कृपा नहीं है। दैव च एव पंचमम, जो पांचवा है भगवत कृपा, यदि ये नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, इसलिए भगवत कृपा के लिए, ठीक है ना, भगवत कृपा के लिए ही बस हमें प्रयास करना चाहिए। भगवत कृपा से हट करके कुछ प्रयास करोगे तो समस्याओं के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसलिए जो है हमें प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो है चाहे भगवान चाहे तो सब कुछ संभव हो सकता है। हरे कृष्णा हरे हरे। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, किसी प्रश्न है किसी का? अच्छा, किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ बोलो बोलो। क्या इसमें समझा नहीं, क्या इधर आ गया थोड़ा आगे? अच्छा, शास्त्रों में पुत्र के बारे में है, पुत्रियों के बारे में क्यों नहीं, आपका ये कहना है? पुत्रियों के बारे में, हाँ पुत्रियों के बारे में है, पुत्री साक्षात यस्ते गरम, क्या बोलते हैं, जहां स्त्रियों का जिस घर में सम्मान होता है, यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां जिस घर में जो है स्त्रियों को सम्मान दिया जाता है, जिस घर में पुत्रियों को सम्मान दिया जाता है, रमन्ते तत्र देवता, वहां सारे देवताओं का वास रहता है, साक्षात लक्ष्मी का वास रहता है, तो पुत्री तो कोई खराब थोड़ी है, पुत्री है इसका मतलब है कि वो जो है एक साक्षात लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है, तो इसलिए शास्त्रों में पुत्री का जो है होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कि पुत्री भी एक पिता के लिए, माता पिता के लिए सबसे ज्यादा देखा जाए तो पुत्र तो कपूत कब हो जाएगा, लेकिन पुत्री कभी भी नहीं, हाँ हमेशा पुत्री जो याद रखती है, आप जान लो पिता आएगा तो पापा जब आएंगे तो जो है बच्चा तो पापा हलो हाय कर देगा, लेकिन पुत्री सब काम छोड़ करके पापा की गोद में आ जाएगी, होता है कि नहीं, और पानी के लिए बोलेगा पापा पानी लेके आओ, तो पुत्र तो आंख बंद कर लेगा, अपनी छोटी बहन से कहेगा जा, और वो बिचारी नहीं कहे बिचारी दौड़ करके जाएगी और पानी लेकर के आएगी और पापा को पहले पानी वो देगी, लड़का देने वाला नहीं पहले पानी, तो इसलिए देखा जाए तो जितना पुत्री वफादार होती है माता पिता की, बच्चे इतने वफादार नहीं होते हैं, तो इसलिए पुत्रियों के बारे में तो फिर कहना ही क्या, मतलब पुत्रियों के ये बात ऐसे घटा लेना चाहिए कि शास्त्रों में, क्योंकि ज्यादातर उन लोगों का वर्णन किया जाता है जो कपूत है, ज्यादा वैसे बदमाश टाइप के है। अच्छे तो अच्छे है ही है, उनके बारे में क्या वर्णन किया जाए, तो इसलिए बच्चियां जो है देखा जाए तो माता पिता के लिए जितना, तो उस दिन उनका मालूम पड़ता है कि बच्ची कितनी प्रिय रहती हैं, जिस दिन बच्ची जब घर छोड़ करके अपनी ससुराल में जाती है, तो उस समय जो पिता पिता है जो है वह देखा जाता है कि वो फिर 15 दिन तक उसके विवाह के पूरे 15 दिन पहले खूब दौड़ धूप करेगा, पूरा इतनी शक्ति आ जाएगी उसके अंदर, मशीन की तरह काम करेगा, लेकिन जैसे ही पुत्री चली जाती है, ठीक है ना, तो मानो उसकी सारी शक्ति को ही वो लेकर के चली जाती है, फिर 15 दिन तक मतलब वो फिर कुछ देखता नहीं, कुछ भी हो जाए, कितना भी खराब काम हो जाए, लेकिन देखता नहीं। तो इसलिए हम सोच सकते हैं कि जो है बच्ची कितनी महत्वपूर्ण है, बच्ची नहीं तो वास्तव में बहुत मुश्किल है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महाप्राण की जय। निताई गौर प्रेमनंदे।